नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू और आज़ादी की। आज वह पीढ़ी तकरीबन विदा हो चुकी है जिसने 15 अगस्त 1947 का दिन जिया था। उस दिन अपने होशावास में रहे लोगों में से भी शायद कुछ ही लोग रहे होंगे जिन्होंने पूरी शिद्दत से उस बदलाव को महसूस किया होगा। हमारे लिए तो खैर उस बदलाव को महसूस करना नामुमकिन जैसा है। हम वे लोग हैं जिसके लिए राजनीति और अभिव्यक्ति की आज़ादी उतनी ही सुलभ है जितनी की हवा और पानी। हम चाहकर भी कल्पना नहीं कर पाते कि वह कैसा समय रहा होगा जब लोगों को सिर्फ ठुकुर सुहाती बोलनी पड़ती होगी, और ना हम ये समझ पाते हैं कि वह कैसा होगा जब इस या उस राजनीतिक विकल्प को चुनना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी गुनाह था। इसलिए अक्सर हम खुद को हासिल बोलने की आज़ादी और राजनीतिक विकल्प चुनने की आज़ादी को ना कुछ समझने लगते हैं। हम सवाल करते हैं कि बिल्कुल हमारी आज़ादी अधूरी है। वैसे एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके के सवाल बिल्कुल होने चाहिए। खुद से असंतुष्ट होना और सवाल करना आगे बढ़ते समाज की निशानी होती है। लेकिन सवाल करते समय अगर हम अपने उन पुरखों को बौना साबित करने लगें, उनके किरदार पर कीचड़ उठाने लगें जिन्होंने किश्ती को तूफान से निकाला था, तो ये कोई समझदारी की बात तो नहीं की जा सकती। अधूरी आज़ादी को लेकर उपजे सवाल बहुत जायज हैं। उनमें मुल्क को आगे ले जाने की छटपटाहट है। आज़ादी के बाद इस तरीके के सवाल पूछने की एक लंबी परंपरा रही है। 1990 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह सामाजिक गैर बराबरी को पाटने की कोशिश में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देते हैं। तकरीबन इसी समय मान्यवर काशीराम दलितों को सत्ता की जाजम पर बिछाने के बजाय सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार करते हैं। 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर लोकपाल का नारा बुलंद करते हैं और पूरी राजनीतिक बिरादरी को चोर कहने लगते हैं। इस तरह अंदाजा लगता है कि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी वाकई कुछ कम थी। इसीलिए ज्यादा आज़ादी पाने की लड़ाई अब तक चली ही आ रही है। लेकिन यह तो वह मांग है जो मुख्य धारा की शांतिपूर्ण राजनीति में उठाई जा रही है। मुख्य धारा से इतर एक दूसरी परंपरा उग्र वामपंथी आंदोलन की है। इसे हम माओवादी या नक्सलवाद के रूप में भी जानते हैं। ये लोग बंदूक के जोर पर संपूर्ण आजादी का नारा बुलंद किए हुए हैं। कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों से रह रहकर के एक अलग किस्म की राजनीति की मांग उठती रहती है जो कहती है कि अपने अपना अलग देश चाहिए। समाजवाद और वामपंथ से अलग एक और धारा है, वह है उग्र हिंदुत्व की, जो पिछले 70 सालों से यही मानती आई है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक वह असल मायने में आजाद नहीं होगा। ये सारी विचारधाराएं परस्पर विरोधी हैं, लेकिन इन सब धाराओं में से एक प्रखर समानता है कि ये सब 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी को अधूरी आजादी मानती है। इन सबका मानना है कि जिन सवालों से ये विचारधारा उठा रही है और उसका जो समाधान वे सुझा रही है, अगर उन्हें मान लिया गया होता तो सबके सपनों का भारत कब का बन चुका होता। तो जरा पीछे चलकर खंगालते हैं कि नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आजादी को कैसे समझा था। क्या उन्हें अंदाजा था कि भारत को मिली आजादी अधूरी थी, और अगर उन्हें वह आजादी अधूरी लगती थी तो उसे मुकम्मल करने का कौन सा रास्ता वे अपना रहे थे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो सवाल घुमा फिरा कर नेहरू की चौखट तक पहुंचा दिए जाते हैं, उनका अंदाजा नेहरू जी को रहा हो और वह एडवांस में ही इसका जवाब सार्वजनिक रूप से दर्ज करा गए हो। नेहरू ने सिर्फ जवाब दिया बल्कि उस मंच से जवाब दिया जिसे मुल्क का सबसे ऊंचा सार्वजनिक मंच माना जाता है, यानी 15 अगस्त को लाल किले से दिया जाने वाला प्रधानमंत्री का भाषण। 26 मई 2014 को पद संभालने के बाद लाल किले से अपने पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री के बजाय देश का प्रधान सेवक कहा। उनके इस संवाद ने लोगों का ध्यान खींचा। इस बात की चर्चा हुई कि इस आदमी को प्रधानमंत्री पद की सही गरमा का अंदाजा है, लेकिन जल्द ही लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि उन्होंने नेहरू जी के 15 अगस्त 1947 के भाषण से उचित प्रेरणा ली है। जरा देखिए आजादी के दिन रेडियो पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संदेश में नेहरू क्या कह रहे हैं। आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों में देखा था वह कुछ हमारी आंखों के सामने आ गया है। चीजें हमारे कब्जे में आई। दिल हमारा खुश होता है कि एक मंजिल पर हम पहुंचे। यह हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और यह बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। नेहरू ने प्रधान नहीं प्रथम सेवक कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में सर्वोच्च नहीं बल्कि सारे मंत्रियों के बराबर होता है, लेकिन उनमें सबसे पहला होता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण की परंपरा 15 अगस्त 1948 में शुरू हुई। लाल किले से अपने पहले भाषण में नेहरू खुद आजादी को लेकर वह सवाल उठा रहे हैं जिनसे उनके समय में से लेकर के आज तक रह कर उठाया जाता है। नेहरू कहते हैं, जो लोग आजादी चाहते हैं उनको हमेशा अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए और रखने के लिए अपने को नौचौर करने को तैयार रहना चाहिए। जहां कौम गफलत खाती है वह कमजोर होती है और गिर जाती है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। लेकिन इतना कहकर मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क इसलिए अपनी फौज और लड़ाई का सामान तैयार नहीं करता कि किसी को गुलाम बनाए, बल्कि अपनी आजादी को बचा सकें और अगर जरूरत पड़े तो दुनिया की आजादी में मदद कर सकें। बहुत दिन तक हम गुलाम रहे, उससे हम में गुलामी से नफरत हुई, तो भला हम कैसे किसी और को गुलाम बना सकते हैं। आगे वे कहते हैं कि हमने और आपने ख्वाब देखे, हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब। उन ख्वाबों में क्या था? वह ख्वाब खाली यह तो नहीं था कि अंग्रेज कौम यहाँ से चली जाएं और हम फिर एक गिरी हुई हालत में रहें। जो स्वप्न था वह यह कि हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों की हालत अच्छी हो, उनकी गरीबी दूर हो, उनकी बेगारी दूर हो, उनकी बेकारी दूर हो, उन्हें खाना मिले, रहने को घर मिले, पहनने को कपड़ा मिले, सब बच्चों को पढ़ाई मिले और हर शख्स को मौका मिले कि हिंदुस्तान में वे तरक्की कर सके, मुल्क की खिदमत कर सके और अपनी देखभाल कर सके और इस तरह से सारा मुल्क ऊपर उठ सके। इसी भाषण में आगे बढ़ते हुए नेहरू समझाते हैं कि असली जय हिंद क्या है। वे कहते हैं, थोड़े से आदमियों की हुकूमत की ऊंची कुर्सी पर बैठने से मुल्क नहीं उठते, मुल्क उठते हैं उठ जब करोड़ों आदमी खुशहाल होते हैं और तरक्की कर सकते हैं। हमने ऐसा स्वप्न देखा और उसी के साथ सोचा कि जब हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों के लिए दरवाजे खुलेंगे या उनमें से लाखों ऐसे दर्जे के लोग निकलेंगे जो नाम हासिल करेंगे और दुनिया पर असर पैदा करेंगे, वह बातें अभी दूर हैं, क्योंकि हम झगड़ों फसादों में मुबलता हो गए, फंस गए। लेकिन उस काम को हमें पूरा करना है। जब तक हमारा वह काम पूरा नहीं होता तब तक हमारी आजादी भी पूरी नहीं हो सकती। उस वक्त तक हम दिल खोलकर जय हिंद भी नहीं बोल सकते। नेहरू आगे कहते हैं कि अगर आप आजाद कौमें हैं तो खाली एतराज करने से काम नहीं चलता, उस बोझ को उठाना है, सहयोग करना है, मदद करनी है और अगर हम सब इस तरह से करें तो बड़े से बड़े मसले हल हो सकते हैं। अगर हम यह समझ लें कि ये सारी जिम्मेदारी कुछ अफसरों की है, हुकूमत की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं उनकी है, तो ये गलत बात है। आजाद मुल्क इस तरह से नहीं चला करते, गुलाम मुल्क इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से चलाए जाते हैं। जब गैर मुल्क के लोग हुकूमत करें तो वे जो चाहें सो करें, लेकिन आजाद मुल्क में अगर आप आजादी के फायदे चाहते हैं तो आजादी की जिम्मेदारी भी ओढ़नी पड़ती है, आजादी के बोझ भी ढोने पड़ते हैं, आजादी का निजाम और डिसिप्लिन भी आपको उठाना चाहिए। पुरानी आपकी आदतें जो गुलामी के जमाने की थी उन्हें हम पूरे तौर से अभी तक भूले नहीं हैं और हम समझते हैं कि बगैर हमारे कुछ किए ऊपर से सब बातें हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें कि आप अगर आजाद हुए हो तो फिर एक आजाद कौम की तरह हर एक को चलना है और उस जिम्मेदारी को ओढ़ना है, उस बोझ को उठाना है। तो सुना आपने किस तरीके से नेहरू देश के प्रत्येक वासी से यह आग्रह कर रहे थे कि हमें इस आजादी को मिलकर के आगे ले जाना है। आजकल हम देखते हैं कि 15 अगस्त को आजादी की वर्षगांठ स्कूल कॉलेज से लेकर के लाल किले तक मनाई जाती है। यही नहीं, बहुत सी कंपनियां अपना माल बेचने के लिए आजादी का वीकेंड या ऐसी ही प्रचार सामग्री गढ़ लेती है। टीवी चैनल अपने लोगों को तिरंगे में लपेटते हैं, ऑटो टैक्सी हर जगह तिरंगे लहराते हैं, ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन 15 अगस्त 1960 को आजादी के 13 साल बाद नेहरू क्या कह रहे थे ये सुनना भी जरूरी है। नेहरू कहते हैं, आज हम यहाँ जमा हुए हैं कोई तमाशे के तौर पे नहीं, तमाशा देखना या दिखाने नहीं, बल्कि पुरानी बातों को याद करने और आगे देखने के लिए, इसलिए कि फिर से हम अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएं अपने सामने रखें। हमें आजादी मिली परिश्रम से, कुर्बानी से, मेहनत से, सब बातों से, लेकिन अगर आप समझें कि आजादी मिलने के बाद कौम का काम खत्म हो जाता है तो ये एक गलत विचार है। आजादी की लड़ाई हमेशा जारी रहती है, कभी उसका अंत नहीं होता, हमेशा उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, हमेशा उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, तब वह कायम रहती है। जब कोई मुल्क या कौम ढीली पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, अपनी बातें भूल करके छोटे झगड़ों में पड़ जाती है, उसी वक्त उसकी आजादी फिसलने लगती है। इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा, आज का दिन कोई तमाशे का दिन नहीं है, ये एक बार फिर से इकरार लेने का दिन है, फिर से प्रतिज्ञा करने का दिन है, फिर से जरा अपने दिल में देखने का कि अपने आपका कर्तव्य पूरा किया कि नहीं। आजादी आई, इंडिपेंडेंस आई, किसके लिए आई, किसके लिए इंडिपेंडेंस आई? क्या वह चंद लोगों के लिए आई? जवाहरलाल के लिए आई कि आपको आपने चंद रोज के लिए प्रधानमंत्री बना दिया? जवाहर आएंगे और जाएंगे, और लोग भी आते हैं जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो आता ही है, जाता कभी नहीं है और आता ही रहेगा। तो फिर सबके लिए जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ आदमी हैं और औरतें हैं और बच्चे हैं जो आजादी के हिस्सेदार हैं, वारिस हैं, उनको इससे पूरा फायदा मिलना है, तभी आजादी पूरी होगी। आजाद होने के बाद 17 साल तक नेहरू उस आजादी को बचाने के लिए काम करते रहे जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 बेशकीमती साल खर्च किए। इन 30 में से 10 साल जेल में बीते थे, इसलिए उन्हें पता था कि यूनियन जैक उतार करके तिरंगा फहराना ही आजादी नहीं है, आजादी को बचाना होता है, क्योंकि उसे हर वक्त चुनौतियां मिलती रहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।